उदाहरण देकर के बतलाऊं, कृष्ण गोचारण के लिए जा रहे हैं, हजारों बछड़े फुदकते हुए जा रहे हैं और कृष्ण बंसी लेकर के उनके पीछे पीछे बलदेव और सखाओं के साथ में जा रहे हैं। एक नवेली विवाहित होकर के नंदगांव में आई थी, वो कृष्ण को दर्शन करने के लिए अपने बाहर में आना चाहती थी घर के अंदर। सास ने कहा, खबर मत जाना नहीं तो तुमको सांप काट देगा, काला बचेगी नहीं। तुम्हारी बेटी को नहीं काटता और तुमको नहीं काटता, तुम क्यों जा रही? मैं तो जाऊंगी। उसकी बेटियां भी और सब लोग चारों तरफ में अपने खिड़की पर बैठे हुए, कोई ऊपर में बैठे हुए, कोई दरवाजा के सामने से कृष्ण का गोचारण दिख रहे हैं। कृष्ण एक बछड़े को थोड़ा सा पूंछ में छू दिया और वो भागा हुआ ठीक जहां वो खड़ी थी दरवाजे पर वहीं आया। कृष्ण उसके पास जाकर के थोड़ी सी अपने हाथों से बंसी से उसके चिबुक पर हाथ थोड़ा सा रखा, उसके तरफ देखा, दोनों की नजरें एक हुई। कृष्ण के सौंदर्य ने, माधुर्य ने और इस लीला विनोद ने उसका हृदय ही चुरा लिया और कृष्ण फिर चले गए गोचारण में। बेचारी खड़ी की खड़ी रह गई, भूल गई सब कुछ, धूलें चल हो गई, बछड़े और गायों के साथ में कृष्ण भी वन के अंदर में चले गए और वो जैसी की तैसी थी वही खड़ी रही। बस मन तो है नहीं, उसकी सासी इसने कहा था ना ये तुमको काला सांप दस देगा, तुम मानी नहीं हमारी बात, हुआ ना, चलो चलो। जब जोहरा ले गई घर में, देखा जी इसकी चेतना कैसे कराएं, तो उसने एक हड़िया में कहा जिसे जाओ घर से दही लाओ और मथनी हाथ में दे दी, मथो इसको, ऐसा करने से शायद उसका सेंस आ जाएगा। तो दही मथने लगी तो वो ले आई घर से, उसको ये पता नहीं है ये हाड़ी किस चीज की है, ये हड़िया में रखा था सरसों, दही तो थी नहीं, दही वाली दूसरी हड़िया, इसी को लेकर के और मथने लगी। देखो तो अभी भी भूत नहीं उतरा। फिर जाओ पानी ले आओ, तो चलने फिरने से शायद हो जाए। एक अपने बच्चे की को उसके गोदी में दे दिया और दूसरी में एक गागर, उसके ऊपर में एक और गागर रख दी, सिर पर एक रख दिया, उसके ऊपर में गागर, उसके ऊपर गागर और इधर में हाथ में डोल और रस्सी, ये रख दिया। जाओ अभी भी उतरे कुछ तो लेकर के चली, बच्चे को भी ले लिया और उनको तो अभ्यास है, आप लोगों को भी बहुत से लोगों का अभ्यास है ऐसा, सिर पर यदि रख लिया घड़ा दो चार, हाथ से पकड़ने की जरूरत नहीं, बैलेंस एकदम सीधा है, यहाँ पर भी है बैलेंस के साथ में चलती, रस्सियों पर भी नर्तकियां नाचती हैं बैलेंस से। तो वो चली कुएं पर गई, उस सबको रखा, बच्चे को भी रख दिया और होश तो है नहीं, उसने रस्सी में फंदा लगाया और वो फंदा डोल में ना लगा करके वो किस में लगाया, बच्चे के गले में लगा दी। और सब स्त्रियां मत, अरे देखो 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 क्या कर रही, अरे क्या कर रही। तो एक ने कहा, अरे भाई भूत नहीं, ये नंद का पूत लगा है, भूत रहता तो उतर जाता, ये नंद का पूत कभी उतरता नहीं है। बड़ी मुश्किल से फिर उसको पकड़ करके घर में ला गया। ये मनमना भाव है, मनमना भाव माने कैसा, ऐसा अपना मन ऐसा रंग जाए कृष्ण में, समाधि जैसे, मैं कहाँ हूं क्या हूं ये सब पता है। आत्मा सक्रिय रूप में उस समय कृष्ण की सेवा करते हैं, इसको कहते हैं समाधि। समाधि माने आदमी मर जाना जैसा निष्क्रिय नहीं, यह है समाधि का आदेश है। मन मना भव मत भक्तो, इसी तरह से सबके उदाहरण बहुत लंबे चौड़े हैं, हम विषय से उधर में चले जाएंगे, हमारा मूल विषय रह जाएगा। तो इसलिए मन को हमारे अंदर में दो, चिंतन करो, क्रियाओं के द्वारा शरीर के द्वारा क्या करो, हमारी सेवा करो। यदि इतना भी नहीं कर सकते, अर्जुन कहते हैं कि युद्ध में ये सब होता, हमारा अर्चन करो, अरे युद्ध में अर्चन करें ना युद्ध करें, अच्छा कुछ नहीं कर सकता है तो एक बार नमस्कार करो। एक बार नमस्कार करने वाला व्यक्ति भी कभी कर्म के चक्कर में नहीं पड़ता, ये सब गीता के अंत में कहा सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरण। अभी तक जब असुर थे ये सब कहने का सुयोग नहीं था, अब जरा शांति आई ना तो लोग सोच रहे हैं जे कैसे सुख होगा, उस समय में असुर लोग तो आए नहीं, अब वैसी स्त्रियां और वैसे जो सब पुरुष हैं उनको सोने का मौका मिला, चित्त और शांत हो गया। तब फिर क्या हुआ, अभी गीता की जो कथा थी वो लोअर क्लास की प्रारंभिक पाठशाला की शिक्षा है, कख गवा है ना ऐसे, और भागवत की कथा इसके बाद में आरंभ होती है वो क्या है, वो बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट की पीएचडी और डी लीड की बात है। गीता से परमार्थ आरंभ होता है और जहां पर समाप्त गीता होती है उसके बाद से भागवत की कथा आती है, समझने का भी इतने तो नहीं समझेगा, इस चीज को समझिए। गीता के लिए कहा गया सर्व उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन सुधीर भोक्ता गीतामृतम महत्। उपनिषद है, उपनिषद का वेद का जो सार भाग है वो उपनिषद कहलाता है, वो 108 है या 1008 उसकी शाखा है, उसका सार क्या है गीता है, इसलिए गीता भी उपनिषद है, इसलिए गीता उपनिषद कहा जाता है। इसमें आत्मा और अनात्मा में क्या अंतर है, जड़ शरीर में और आत्मा में क्या अंतर है, ये सब चीजों को बतलाया गया और भगवान की शरणागति करी। और भागवत क्या है, निगम कल्प कल्प सर्व उपनिषदो गावो दोगधा, दोहन करने वाले कौन है, कृष्ण है, पार्थो वत्स और जो अर्जुन है क्या है, बछड़ा है, और दूध किस लिए, केवल बछड़े के लिए नहीं, बछड़े को पहनाने के लिए, गाय को से दूध स्थान में उतर जाए और इसके बाद में थोड़ा सा पी लेता है, इसके बाद में बछड़े को हटा करके उसको दूध देते हैं, उसको दूसरे लोग देते हैं। संसार के जो दुखी लोग हैं ये लोग बछड़े के समान हैं, इन लोगों के लिए ये दूध दुहा कृष्ण ने। किंतु भागवत क्या है, निगम कल्प तरुर्गलितं फलम सुखमुखादं वृद्र संजितं पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रस। ये समस्त वेद ऊपर से नीचे तक चारों वेद उपनिषद सब जितने 18 54 प्रकार के पुराण हैं, पुराण उप पुराण शाखा पुराण महाभारत और रामायण, और इसके अतिरिक्त भी हमारे जो मनुस्मृति इत्यादि जो शास्त्र हैं सबका मंथन करके यह है भागवत। इसलिए निगम कल्प तरुर्गलितं फलम सुखमुखाद अमृत, इसलिए भागवत की महिमा कुछ और है। गीता सुनने के बाद में लोगों को हुआ जैसे भागवत सुने तो परीक्षित महाराज जी की सभा में कौन आया, सुखदेव, पहले गीता हुआ, कृष्ण ने खुद कहा और अपने परिकर को भेजा, सुखदेव गोस्वामी को भेजा परीक्षित महाराज जी को, अब भागवत सुनने का समय आया तो भागवत उन्होंने सुना। भागवत में क्या है, हम जितने जीव हैं अभी यहां के नहीं हैं, हमारा स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास और दासी, यह जगत उस जगत का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, वहां जो चीज है उसी की परछाई इस जगत में है, उस जगत में कृष्ण एकमात्र कांत हैं और सब उनकी प्रियसियां हैं प्रियतमा हैं। इस जगत में इसका थोड़ा सा कुछ बदल गया, दाहिनी चीज बाएं, बाएं चीज दाहिने, ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली चीज ऊपर, परछाई में दिखती है ने? आप दर्पण देखिए, आपका यह आंख इधर ही दिखेगी, ये आंख इधर देखेगी, उल्टा हो जाएगा, परछाई में भी ऐसा होता है उल्टा। तो ये परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ गोलोक वृंदावन ये जगत है, इसलिए यहां पर जो चीजें हैं वहां हैं, तभी इसकी छाया इस जगत में, जो कुछ भाव देख रहे हैं परस्पर प्रीति देखते हैं ये सब उस जगत की छाया है, उसको अवलंबन करके उस जगत में जाना है। इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति है जो सुख नहीं चाहता है कोई, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक जितने भी प्राणी हैं अच्छी तरह से समझो, कोई भी संसार में नहीं है, आप लोग किस लिए आए? और लोग नहीं आए, आप लोगों ने देखा यहाँ जाने से सुख होगा, अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे, उसको फॉलो करेंगे और जीवन में सुखी होंगे। एक चींटी सवेरे से दीवार पर चढ़ रही है, रात में भी चढ़ करके क्या खोजती है? कहीं से गुड़ मिल जाए, कहीं से चीनी मिल जाए, कहीं से कोई चीज मिल जाए खाने के लिए। इसलिए सभी लोग सुख के लिए खोज कर रहे हैं, किंतु सुख मिल रहा है कि नहीं? पद्धति नहीं है, प्रोसेस नहीं है वो सुख की, इसलिए हमें सुख नहीं मिल रहा। गीता वो प्रोसेस बतलाती है कि कैसे भगवान को पाया जा सकता है। भगवान दिखते नहीं है किंतु निराकार नहीं है, कल भी हमने बतलाया था। कृष्ण उनका जो स्वरूप है यही उनका नित्य स्वरूप है, ये बदलेगा नहीं, जब ही आएंगे इसी रूप में आएंगे कृष्ण। उनमें बहुत सी लीलाएं हैं, बहुत से गुण हैं, बड़े भक्त वत्सल हैं, वो बड़े कृपालु हैं, ऐसे नहीं भगवान है। उनको कोई माने न माने सबका पालन पोषण वो करने वाले हैं, तो भी उनसे हमारा एक कोई संबंध है। कृष्ण निर्विशेष वादियों के लिए निराकार हैं, हो सकते हैं, और दूसरे लोगों के लिए ईसाई जो हैं हमारे भाई, उनके लिए वो लोग कहते हैं कि गॉड ग्रिप मी ब्रेड एंड बटर, खाने के लिए दो, और पिता के रूप में ही उनका भजन करते हैं। हमारे दोष को क्षमा कर, हमारे पाप को क्षमा कर देना, और फिर पाप करने का जब फिर हमारा क्षमा कर देना, इसके लिए करोड़ों पाउंड और डॉलर और क्या क्या खर्च करते हैं। इसमें भक्ति शक्ति कुछ नहीं, हमारे यहां ऐसा नहीं। हमारी संस्कृति में संपूर्ण से भगवान का समर्पण है। हमारा जीवात्मा इसके अंदर में जो है इसका एक स्वरूप है, जैसे कृष्ण का स्वरूप है, बड़ा ही सुंदर। वो भावों के ऊपर में निर्भर करता है, कैसे हमारी आत्मा में एक इतना खूबसूरत रूप है किसी न किसी प्रकार से भगवान से उससे संबंध है, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ही में ऐसा है। जैसे एक चीज को समझो, 8 बज गया, बहुत जल्दी बज गया, तो हमने सोचा जी और सब कथा कहेंगे, कितनी कथा, अभी हमारा वो पहला ही नहीं आरंभ हुआ, शेष हुआ हा? तो फिर इसके बाद में फिर कहेंगे, वक्तव्य को स्पष्ट कर दे थोड़ा सा, क्या कह रहा था? स्वरूप है, अच्छा, जैसे गुठली है आम की, इमली का बीज है, आम का बीज है, नीम का बीज है, सबको गंगा के किनारे एक ही मिट्टी में सबको दे दो, और एक ही पानी दो गंगा का, और एक ही हवा लग रही है, और माली भी एक ही है, तो सभी में एक ही जैसा बीज से पेड़ होगा कि अलग अलग? अलग अलग होगा ना। उस बीज में जो पोटेंसी जिस चीज की है, आम से आम होगा, नीम से नीम का पेड़ होगा, गेहूं से गेहूं होगा, चावल से चावल होगा, जिस चीज का पोटेंशियल, उसी तरह से हमारे जो जीवात्मा इसके अंदर में है, कुछ कुछ सेवा की पोटेंसी जीव के हृदय में है। हम लोगों से जो प्रेम करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो उसी के वजह से, वो सब कुछ कुछ है पोटेंसी। इसलिए भजन साधन करने पर वो अब जो भाव है वो प्रकट होता है, और उसी के अनुसार में गोलोक वृंदावन में, बैकुंठ में, राम की सेवा में हम नियुक्त होते हैं। जो है वही होगा, किंतु है कुछ। हम ये स्त्री पुरुष का जो रूप, गधे घोड़े का रूप, ये हमारा रूप नहीं है। एक चींटी के अंदर में भी आत्मा है, और उसमें भी स्वरूप में कुछ भगवान के साथ में संबंध है। इसीलिए यशोदा जी के वो कृष्ण पुत्र हैं, सखाओं के मित्र हैं, गोपियों के प्राण प्रियतम हैं, द्वारकावासी महिषियों के लिए वो पति हैं, हनुमान के लिए राम है प्रभु। इस तरह से विभिन्न संबंध हैं, इन सब में जितने संबंध हैं उन संबंधों में सबसे अधिक जो गहरा और उन्नत सबसे है जिसमें प्रेम अधिक होता है। मैया जसोदा में कितना प्रेम है कृष्ण के प्रति, है ना? उस प्रेम के द्वारा कृष्ण को बांध लेती है, किंतु संपूर्ण रूप से सेवा नहीं कर सकती। जैसे गोपियां, इधर सुनो, ओए बैठो बैठो बैठो, गड़बड़ मत करो, बैठो, अभी सुनो, दे एक मिनट सुनो, हमारी लड्डू देंगे, लड्डू लड्डू है ना हमारे पास। जैसे गोपियां अपने तन से, मन से, वचन से, इंद्रियों से सखा की भांति, पुत्र की भांति, प्रियतम की भांति संपूर्ण रूप से अपने पति की सेवा कर सकती हैं कृष्ण की, यशोदा मैया कृष्ण की कर सकती हैं कि नहीं? नहीं समझा, फिर से समझो। गोपियां कृष्ण के साथ में रास इत्यादि कर रही हैं, कृष्ण से ठट्ठा मसाखरी कर रही हैं, कहती हैं कभी कभी अपने पैरों की छाप कृष्ण के यहां पर दे देती हैं अवतार, और उनके साथ में रास इत्यादि करते हैं। यशोदा जी ऐसा कर सकती हैं कि नहीं? क्या उसमें क्या हर्ज है यदि करें तो? मर्यादा नष्ट हो जाएगी। इसलिए सबसे प्रेम किसमें अधिक है? वो कृष्ण को पुत्र के समान भी प्यार कर सकती हैं, पति के तरह भी, सखा के तरह भी, दासी की भांति भी, और प्रियतम के रूप में जो सर्वोच्च सेवा है वो गोपियां ही कर सकती है, दूसरा नहीं। इसलिए कृष्ण उस प्रेम के ऋणी हो गए हैं, न पा रहे हम निर्वच्य सच्ची। इस चीज को समझो, भागवत में इस प्रेम की महत्ता दिखलाई गई है। ये प्रेम सर्वोच्च है, इसी को देने के लिए हमारे चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए। इस चीज को किसी ने नहीं दिया, ये भागवत ने दिया। इसलिए महाभारत युद्ध के बाद में ये सुनने का अवकाश आया परीक्षित महाराज जी को, नारद जी को, भक्ति देवी को और गोकर्ण धुंधुकारी को, ये सब किया। आज उसी का फल है जो हम सुन रहे हैं। आज यदि उसी समय में वो सब रहते, वो दुर्योधन और रावण जैसे लोग, उत्पाती लोग, हजारों सुनने देते? नहीं सुनने देते। इसलिए ये पहले तो ये बात है कि महाभारत का युद्ध हुआ धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हुआ, इसलिए असुरों को विनाश करके धर्म की प्रतिष्ठा के लिए। और भी आज एक बात करना चाहता था किंतु अभी तो आठ अभी बज गया, इसलिए आज मैं यहीं पर प्रवचन समाप्त करता हूँ। कल है? साढ़े आठ और है, अच्छा ठीक है, तो एक कीर्तन करा दो। तो जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जो रामचंद्र जी ने सीता को क्यों छोड़ा है, अवज्ञा करके नहीं, अब शंकर जी के लिए भी सुनिए, उन्होंने सती जी को त्याग कर दिया एक साधारण सी बात के लिए, साधारण लोग सोचते हैं, इसलिए स्त्रियों के प्रति यह अन्याय हुआ। इसका उत्तर यह है कि किसी समय में शंकर जी अपनी पत्नी सती जी को लेकर दंडकारण्य में आए। उस समय में रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया था और लंका ले लिया था। रामचंद्र जी पागल बन के रो रहे थे, लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे चल रहे, सांत्वना भी नहीं दे पाते। उस समय राम गोदावरी नदी से पूछते हैं, हिरणों से पूछते हैं, वृक्षों से पूछते हैं, अरे तुम्हारी सहेली सीता जी कहाँ गई, मेरी प्रिया जी कहाँ गई, और रोते हैं तड़प तड़प कर। शंकर जी दूर से आए और उनकी लीला में बाधा ना पड़े, इसलिए उनको बहुत दूर से चारों तरफ से परिक्रमा की और साष्टांग प्रणाम किया। पर ब्रह्म के रूप में राम को। सती जी वहां पर थी, उन्होंने कहा जी प्रभु आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? तो आप इस देव पर ब्रह्म राम को प्रणाम करना। उन्होंने पूछा यह व्यक्ति परब्रह्म कैसे? इसको पता नहीं जैसे कौन सी इसकी पत्नी को चुरा ले गया और उसे एक स्त्री के लिए प्रलाप कर रहा है, रो रहा है, पागल हो रहा है, इसको इतना ज्ञान नहीं है तो यह परब्रह्म कैसे हो सकता है? इसको तनिक और स्त्री के लिए इतना छटपट करके रो रहा है, इतना विषयी आसक्त है, इसको आप परब्रह्म कह रहे हैं? हाँ मैं परब्रह्म को ही, ये उनकी मधुर लीलाएं हैं। माना नहीं, कहा जी हम एक परब्रह्म तो वो राम है जो कि सब सबके घट में विराजते हैं और उनकी लक्ष्मी को कौन चुरा करके ले जा सकता है? यदि चुराएगा भी तो क्या करेंगे, उसे साथ में जान करके उसे उसकी हत्या करके उसको ले आ सकते हैं। तो इतना भी बल उनमें नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है, इतने सर्वंतर्यामी कैसे हुए? अच्छी बात है यदि हमारी बातों में विश्वास नहीं है तो परीक्षा कर लो। ये कह करके आगे बढ़ गए और ये सोचने लगी कि अब परीक्षा कैसे करें। अंत में सोच करके निर्णय लिया कि मैं यदि सीता का रूप बना लूं और इनके सामने खड़ी हो जाऊं तो दौड़ दौड़ करके आएंगे पकड़ेंगे, अरे सीता सीता सीता, आलिंगन हमें करेंगे और सोचेंगे जी ये मिल गई, और यदि परब्रह्म होंगे तो हमें पहचान जाए। ऐसी भावना करके और सीता जी का जैसे उनका अपहरण हुआ था उसी रूप में उनको रूप बनाया और बना करके राम के सामने गई। राम ने देख करके भी नहीं देखा, पशुओं से पक्षियों से पूछते हुए विलाप करते हुए जा रहे हैं और ये जो सीता बनी हुई सती देवी ये इधर से घूम करके फिर उधर से उनके सामने जाती हैं, ये देखा नहीं शायद इसलिए फिर उधर से जा रही हैं, फिर उधर से जब उधर गए तो उधर से जा करके वो ये देख नहीं रहा, बार बार ऐसा करने। जब उनके सामने आई एक बार अंत में तो रामचंद्र जी ने रोना छोड़ करके हाथ जोड़ कर कहा जी मैया मेरी माता जी आप यहाँ पर अकेली क्या कर रही हैं, हमारे प्रभु किधर गए, शंकर जी कहाँ गए भगवान? सुनते ही हृदय में डर आ गया, अरे ये तो हमको पहचान लिया, ये तो परब्रह्म है और रोता नहीं है अभी, अब तो एकदम शांत है। थोड़ी देर के बाद में उनके तरफ में देखा तो अब इस रूप में नहीं देखा, जहां उनकी नजर जा रही है पेड़ पौधे इधर उधर सब देख रहे हैं कि सीता और राम दोनों खड़े हैं। इधर देखे ऊपर नीचे चारों तरफ और सीताराम दोनों आश्चर्यचकित हुए, सीता तो चोरी चली गई और इसके साथ में देख रहा हूं देख रही हूं। अब वो चक्कर में और पड़ी, इतने में फिर देखा क्या, वही राम और उसी प्रकार से रोते हुए विलाप करते हुए फिर उनको देखा नहीं, इधर उधर घूमने लगे। ओ ये तो परब्रह्म साक्षात में है, हमारे प्रभु झूठ नहीं बोल सकते। बस उनके चरणों में नतमस्तक हुई और बहुत घबरा करके अब चली शंकर जी के तरफ में, अपना रूप बदल दिया और फिर सती बन गई और शंकर जी के पास में गई। शंकर जी ने कहा जी कुछ परीक्षा ली? अरे प्रभु मैं क्या सा? आप जो कहते हैं वो ठीक है, झूठ बोला। एक तो पहले तो गुरु के प्रति शंका हुई, शंका होने से क्या होता है, संशयात्मा बिना अपने गुरु पर अपने संदेह हो गया किसी बात पर तो उसका विनाश अवश्य आई, और यदि कोई बात गलती भी हो गई तो शिष्य को मान करके और सरल रूप में उनसे पूछना चाहिए था, अब इन्होंने उस बात को छिपाने के लिए झूठ भी बोला, शंकर जी उनके गुरु और पति दोनों हैं, झूठ किया, ये भी एक पाप हुआ। शंकर जी ने देखा अपनी समाधि से इसने सीता जी का रूप बनाया और बना करके और उनकी परीक्षा ली और परीक्षा में देखी जैसे नहीं वो बात मेरी ठीक है। उन्होंने देखा जैसे इसने मेरी मैया का इष्ट देवी का रूप जब धारण किया, सीता जी मेरी इष्ट देवी हैं, शंकर जी सोच रहे हैं, जब मेरी माता का रूप धारण किया उस शरीर से अब इसका हमारा पति और स्त्री का संबंध नहीं रहेगा, अब ये सब समय इनको माता के रूप में मुझको देखना पड़ेगा। यदि कोई मत कोई महिला है, कोई जुआ लड़की है और किसी को उसने अपना स्तन से दूध पिलाया तो वो क्या है? मैया है ना, वो अब स्त्री के रूप में रहेगी? कभी नहीं हो सकता। इसलिए शंकर जी ने प्रतिज्ञा मन ही मन में की, अब इस शरीर से स्त्री और पति का संबंध नहीं रहेगा, अब माता और पुत्र का संबंध रहेगा। मन ही मन ने प्रतिज्ञा की और ऊपर से देवताओं ने फूल की वर्षा उनके ऊपर में की। आपके अतिरिक्त ऐसा कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकता। अच्छा, ये शंकर जी ने स्त्री का अपमान किया या बात ठीक किया, आप लोगों के ऊपर में निर्णय। स्त्री के प्रति अन्याय किया जो उनको छोड़ दिया? नहीं, ठीक बात है ना। अब हुआ क्या, बतलाया नहीं उन्होंने? अब बोल, थोड़ा सा कम बोले और भगवान का स्मरण करने लगे। होई है सोई जो राम रची राखा, को कर तर्क बढ़ा वही साधा। अब जो होना है तो होगा, प्रभु के ऊपर में छोड़ दें, किंतु अब इस शरीर से स्त्री और पति का संबंध नहीं रहेगा, अब इनको माता के रूप में हम लेंगे। गए आश्रम पर तो उन्होंने आमने सामने उनको आसन दिया, अपने बाएं तरफ में आसन स्त्री को देते हैं आधा, और माता को सामने आसन देते हैं आदर के साथ में, श्रद्धा के रूप में। अब उन्होंने यही बात है, अब हमको पत्नी के रूप में इन्होंने ग्रहण नहीं किया, इस शरीर से यह संभव है, इसलिए अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर के शरीर की आहुति दे दी और फिर हिमाचल के बेटी बनी और तब बनी उमा, और उमा रूप से तपस्या करके फिर शंकर जी के पास गए। इसलिए शंकर जी ने भी सीता का परित्याग नहीं किया, रामचंद्र शंकर जी ने परित्याग नहीं किया, ये दूसरी बात है, लोग तह में नहीं जाते, नहीं समझते। इसलिए हमारे शास्त्रों में जहाँ पर कि उमा का, लक्ष्मी जी का, दुर्गा, तारा इत्यादि की पूजा की बात सर्वत्र देखी जाती है, तो हमारे यहाँ स्त्रियों की अवहेला की बात या उनको तुच्छ समझने की बात में कैसे आ सकती है? गायत्री लोग करते हैं, गायत्री क्या है? गायत्री स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। यह है कौन? गायत्री राधा जी का स्वरूप है। जब सब लोग इसका, ब्राह्मण तक लोग भी, सभी लोग इस मंत्र से उपासना करते हैं, लक्ष्मी जी की उपासना कौन नहीं करता, दुर्गा जी की उपासना कौन नहीं भारतवर्ष में लोग करते, उनके हजारों नाम है, तो कहां उपेक्षा हुई? हमारी एक महिला थी गार्गी, जो वेदों का, मंत्रों का उच्चारण करती थी, साधारण नहीं थी, और सब महिलाएं हैं। इसलिए स्त्रियां यह न सोचे, ये हमारी संस्कृति में ये दोष है, न समझने के कारण ऐसा होता है। इसलिए सब डाउट को, संदेह को हटा करके तुलसीकृत रामायण में भी श्रद्धा रखिए, रामायण पुराण भागवत शास्त्रों में रखिए और इस तरह से आगे बढ़िए, भजन कीजिए। अभी देखिए, अभी हम लोग प्राचीन काल से ही आते हैं। ध्रुव जी बड़ा दुखी था, ध्रुव 5 वर्ष का लड़का, किंतु भगवान के भजन करने से उसको इतना बड़ा भारी राज्य मिला विश्व का, जो कि साधारण रूप में अपने पिता से वो राज्य नहीं मिलता। इसलिए धन की भी जरूरत है तो भगवान का ही भजन करो। क्या इस अकामो मोक्ष काम उदारदि तीव्रेण भक्ति योगम जजते पुरुषम। और भी एक श्लोक ऐसे भागवत में है कि यदि कुछ चाहते हो, कुछ नहीं चाहते हो, भगवान की भक्ति चाहते हो, वैकुंठ चाहते हो, स्वर्ग चाहते हो, संसार में सुखी भी रहना चाहते हो, स्त्री पुत्र का, परिवार का पालन पोषण, तो भगवान का ही भजन करो। अब इससे सर कलयुग में एताव भक्ति योग है ना, माने कीर्तन के संयोग से, कीर्तन के साथ में करो, योग तपस्या से भगवान नहीं मिलेंगे। एकमात्र कलयुग में नाम के द्वारा ही होगा, हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम, कलौ नास्ते वो नास्ते वो नास्ते वो गतिर अन्य था। इसलिए नाम का आश्रय लो, पढ़े लिखे हो, मूर्ख हो, बच्चा है, स्त्री है, पुरुष है, मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, कोई भी हो, भगवान का नाम, इससे बढ़कर के कलयुग में नहीं है। और दूसरे चीज कलयुग में संभव पर नहीं है, तपस्या कर नहीं सकते, दान अपने लिए खाने के लिए तो मिलता ही नहीं है, तो दूसरों का क्या दान करोगे, अपनी आवश्यकता ही पूरी नहीं होती। टीवी चाहिए, गाड़ी चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, न जाने क्या क्या भी चाहिए। आजकल लोग जानते हैं ना, विवाह होने के बाद में वो क्या लेने के लिए, दहेज लेने के लिए अपनी स्त्रियों को मार डालते हैं जो दूसरी स्त्री आए, सुना है ना, चारों तरफ में ऐसे हो रहे हैं, किंतु कोई भी सुखी नहीं। इसलिए अकामो सर्व कामो मोक्ष काम उदार भी, जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो हरिनाम संकीर्तन करेंगे। इसमें किसी चीज की आवश्यकता, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते पैर फिसलते हुए भी राम राम कह सकते हैं। कोई मर गया तो जा रहे हैं पीछे पीछे तो क्या कहते हैं, राम नाम संकीर्तन। किसी को बच्चा पैदा हुआ तो राम 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 कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कोई चट्टी कर रहा है तो भी कर सकता है।